ओम शांति। प्यारे बाप दादा और उनकी अलौकिक रचना, वैसे तो हम सभी बाबा के अलौकिक बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने बाबा के अंग संग शुरू से लेकर के जब स्थापना हुई उस समय से लेकर के पार्ट प्ले किया, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए इस सच की नैया में कई हिलोरे आए, लेकिन उन सब बातों को पार करते हुए जिन्होंने आदि सो अंत की, शुरू से लेकर के जो बाबा के हर कार्य में सदा राइट हैंड बन करके रहे, कभी भी जिनके मन में कोई भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं हुई, जो आज बाबा कह रहे थे जिनका ब्रेन अच्छा होता है, समझदार बच्चे हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मा बाबा को ही सब कुछ समझा और ब्रह्मा बाबा के मुखारविंदों से जो कुछ श्रीमत मिली, ये शिव बाबा ने दी या ब्रह्मा बाबा ने दी, कभी उनके मन में कोई प्रश्न उठे ही नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मुझे करना है, बाबा की श्रीमत है। तो ऐसे बच्चों को तो बाबा अपने दिल में समाते ही हैं, और मेरा विशेष भाग्य यही रहा जो आज मुझे वो दिन याद आते हैं, मुझे गोल्डन जुबली होने वाली है। मधुबन में रहते हुए मैं 71 में पहली बार जब मधुबन में आया, वैसे तो बचपन से ही ज्ञान में थे, पर पूरा परिवार था, लेकिन 71 में मैं 9th में पढ़ता था और एक मास की स्कूल की छुट्टी थी। तो उस छुट्टियों के दिनों में मैं मधुबन में आया और मुझे इन दादियों के और दादियों की जो माताएं थी, बुजुर्ग माताएं जो यज्ञ में शुरू शुरू से रही, उनकी सेवा करने का बड़ा अच्छा भाग्य मिला। इसलिए सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों में उन अलौकिक लौकिक माताओं को याद कर रहा हूं, जिनके नाम भी शायद आप लोगों ने कोई नहीं पुरानों ने सुने हो, नयों को तो पता भी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी दीदी मनमोहिनी जी की लौकिक माता जी, क्वीन मदर नाम ही था बाबा ने उसका रखा था, क्वीन मदर। तो वो क्वीन थी, यज्ञ में भी क्वीन थी और लौकिक में भी बहुत बड़े घराने की, बहुत बड़े परिवार की थी। लेकिन जब सिंध के अंदर इन लोगों को ज्ञान मिला तो दीदी की शादी हो चुकी थी, उनकी जो बेटी थी दीदी मनमोहिनी और छोटी बेटी थी शैलेंद्रा दादी, दो बेटियां, और ज्वाइंट परिवार में एक के परिवार से ये तीन, एक भाई की युगल निकली, दो बच्चे बच्चियां निकली, और दूसरा जो भाई था उसकी युगल और दो बच्चियां, वो हमारा परिवार था पूना में। पूना वाले बैठे ना, कोई कोई कौन है पूना के हैं, कोई ब्रश पंजाब भी है, पूना भी बोला, कोई कोई है हमारी ब्रश शांता दादी, हरदेवी दादी और उनकी लौकिक माता जी, ये दो भाइयों के परिवार थे, सगे भाइयों के। और दोनों परिवार से तीन तीन लोग निकल आए और ये बहुत धनाढ्य परिवार था, बहुत पैसे वाले, बहुत नामी गिरामी। एक तरफ ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक पुत्री थी निर्मल शांता दादी, बाबा ने उनकी शादी एक मुखिया के परिवार में की जो सिंध समाज का मुखिया था, और उनको भी एक बेटी हुई निर्मल शांता दादी को, और ज्ञान मिला, बाबा मिला, और एक धक से उन्होंने समर्पित किया अपने को। तो एक तरफ बाबा के लौकिक परिवार के और दूसरी तरफ दीदी मनमोहिनी और उनके लौकिक परिवार वाले दोनों एंटी हो गए, और इतने जबरदस्त एंटी हुए कि ऐसा कैसा ज्ञान है, कैसे दादा ने कहां से सीखा, अब ये तो पता ही नहीं है कि दादा के तन में कोई दूसरा ये खेल कर रहा है। लोग तो समझते थे शायद ये दादा कलकत्ता में रहते थे, वहां से कोई काला जादू सीख के आए हैं, और इसलिए बाबा ऐसे अगर दृष्टि दे दे, योग कराते, ओम की ध्वनि देते तो सब ट्रांस में चले जाते, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते। शिव बाबा का तो पता ही नहीं था, वो तो गुप्त थे। ब्रह्मा बाबा गुम हो जाता, वहां पर उनको श्री कृष्ण दिखाई देते, स्वर्ग की दुनिया आ जाती, उसके साथ सब खेल पाल करने लगते। तो ये स्थापना हुई, और स्थापना में जब ये परिवार निकले तो बहुत इनका विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, पिकेटिंग किया, पुलिस केस की, बाबा के ऊपर तो बहुत कुछ किया। लेकिन जो पक्के निकल आए थे उनका इतना निश्चय टूट था कि भगवान मिल गया है, अभी मुझे संसार की कोई परवाह नहीं, कुछ भी करें। तो बाबा ने इनको बचाने के लिए दीदी को कराची के अंदर एक बोर्डिंग, एक सिलाई स्कूल खोल के दे दिया कि तुम सिलाई मशीन, सिलाई सीख लो और सबको सिखाओ। तो दीदी वो भी इतनी बड़ी घर की होते हुए भी सिलाई स्कूल खोला और सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे परिवार जो निकले हैं, बहुत बाबा से जिगरी प्यार, और बाबा ही भगवान है। शिव बाबा अलग से अपना परिचय तो बाद में दिया कि मैं आया हूं, मैंने प्रवेश किया है, पहले तो इनको कुछ पता नहीं था, यही ब्रह्मा ही भगवान है। और इतना निश्चय बुद्धि से सब बातों का सामना किया, स्थापना हुई। और जब यहां आए हैं तो आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा पेपर आया आर्थिक रूप से, जो पैसा था बाबा की चल अचल संपत्ति थी, जिससे 14 साल तक तो मंडली में 400 भाई बहनों ने बहुत आराम से खाया पिया, मौज किया। लेकिन जब वहां से ट्रांसफर होकर के भारत आए आबू में, तो सबसे पहले तो यही पेपर शुरू हुआ। पहला पेपर था ठंडी का, क्योंकि 15 मई 1950 को आए हैं, और उसके बाद तुरंत बरसात शुरू हो गई, और बरसात माउंट आबू में इतनी जबरदस्त होती है, जब होती है तो बादल फागी और इतनी ठंड हो जाती है, तो सबके सब, कोई के पास गर्म कपड़े नहीं, कोई दवाई दरमल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और पैसा भी खुद जो था ट्रेन में, शिप में, सब इतने लोगों को लाने जाने में खर्च हो गया। अब वो पेपर जो बाबा ने लिया था, ये बाबा का ही खेल, नहीं तो कोई को भी निमित्त बना सकता था, टच कर सकता था, भूखा एक दिन भी नहीं रखा बच्चों को, टच किया बच्चों को, लेकिन केवल उतना ही आता था जितना भोजन बनता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो पक्के बाबा के बच्चे थे, जिनको आज हम पूर्वज कह रहे हैं, यहां पर हमारे सामने वो सब पूर्वजों के फोटो लगे हैं, और ड्रामानुसार इसमें एक दो की मैंने डायरेक्ट पालना नहीं ली है, लेकिन सब की डायरेक्ट पालना मुझे मिली 50 साल में, तो सब मिल गया। तो जब शुरू शुरू में आए तो ये पक्के जो बाबा के ऊपर बलिहार जाने वाले बच्चे थे, पहले तो इनकी सेवा करने का भाग्य मिला। क्वीन मदर के पास में जाता था, और साथ में हमारी दादी रतन मोहिनी की लौकिक माँ देवी माता थी, उनको भी बुजुर्ग थी, उनकी सेवा करने का भी चांस मिलता था। और एक और बुजुर्ग दादी थी, उनका नाम सुना होगा, ध्यानी दादी, जो मम्मा की लौकिक में मासी थी। वो अम्बाला में पहले रहती थी, लेकिन जब बुजुर्ग हो गई, सेवाएं नहीं कर पाती थी, थोड़ा पैरों की तकलीफ हो गई, तो बाबा ने कहा यहीं रहो, तो फिर यहीं रहती थी अंत में। तो इन तीनों माताओं की सेवा करने के लिए दादी कहती थी, जाओ इनके पास, इनको भोजन दे करके आ जाओ, इनके कपड़े सुखा के आ जाओ, थोड़ी छोटी छोटी सेवाएं, लेकिन इनका इतना प्यार मिलता था। जैसे बच्चे जाते हैं ना घरों में, कोई पूछना नहीं, घुस जाते थे दादियों के, माताओं के कमरों में, जो सेवा होती थी कर देते थे। तो इनसे हमको सौगातें मिलती थी, टोलियां मिलती थी, बहुत प्यार पालना ऐसे पुचकार मिलती थी। तो वो बचपन था, और मैं एक मास जो यहाँ रहा, इन दादियों की, इन माताओं की सेवा करके मैंने सबके दिल जीत ली, भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके, सब कार्य कर देना। तो गर्म पानी, क्योंकि उस समय तो ये सब साधन नहीं थे, आपको मालूम होगा हमारे घर में कोई भी साधन नहीं थे साइंस के, सुख के जो साधन आज साइंस ने दिए हैं। हम एक जगह पर एक बॉयलर गर्म करते थे, रात को 2 बजे उठ करके एक टंकी पानी की गर्म करते थे, लकड़ी लगा लगा करके, और 3-4 बजे के बाद सबके कमरों में गर्म पानी की बाल्टियां उठा उठा के भेज दे आते थे। कोई कहता था भैया 1-2 बाल्टी दे दो, कोई कहता था आज मुझे बाल धोने 3 बाल्टी चाहिए। तो हम यही सेवा सुबह सुबह करते थे, उधर अमृत वेला चलता था, उधर हमारी पानी देने की सेवा चलती थी, लेफ्ट राइट 2 बजे गर्म कर लेते थे। तो इनकी पालना जो मिल रही थी, अलौकिक जीवन का क्या अनुभव मैं आपको सुनाऊं। ये स्नेह की देवियां थी, स्नेह की मूर्तियां, इतना स्नेह, इतना प्यार, और हर प्रकार का ध्यान रखती थी। कोई चीज की कमी तो नहीं है, कहीं से कोई चीज ऐसी तो नहीं जो इनको चाहिए और इनको न मिली हो। तो वो एक मास में जो यहां रहा, वो बहुत सबके बहुत समीप आ गया। और दीदी देखती थी कि इसको तो माताओं का बहुत प्यार मिलता है, ये बहुत प्यार से सबको देखता है। तो दादी को दीदी ने बोला, भाई ये मोबाइल बंद कर दो ना। दीदी ने बोला दादी को कि इस बच्चे से बात करो, ये बहुत अच्छा यहाँ सेवा के लायक है, कर सकता है, रह सकता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जब मेरे को दादी लेके गई झूले पर, और मैंने अपनी कहानी जन्म पत्री बताने लगा कि मेरी उम्र अभी 15 साल है और मैं 9th में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी 3 भाई हैं लौकिक में, और तीनों के बीच में मैं इकलौता बेटा हूँ, एक बहन एक भाई, बहन तो पहले ही समर्पित हो गई है सेंटर पर, मधुबन में आ गई थी, और मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे दादाजी ज्ञान से बिल्कुल एंटी हैं, पिताजी के बड़े भाई, वो तो मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ आने की छुट्टी दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये भी ब्रह्मा कुमारी में चला जाएगा तो कुलदीपक कौन बनेगा, घर कौन संभालेगा। तो जब मैंने दादी जी को अपनी बातें सुनाई तो कहती, तुम्हारी दिल क्या है वो बताओ। मैंने कहा, दादी मेरे को लगता है ये मेरा अपना घर है, मैं यहीं रह जाऊं, यहीं सेवा करूं। तो दादी कहती, दीदी की नजर तो तुम्हारे पर पड़ी है, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो लगता नहीं है कि तुमको यहां पर रहने की छुट्टी मिलेगी, जाओ अपने घर से अगर छुट्टी मिलती है, फिर भी अभी छोटे हो, 3-4 साल पढ़ लो। तो मेरे मुख से निकला, बाबा तो कहता बाबा विनाश होने वाला है, दादी अभी तो विनाश होने वाला है ना, अभी मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो कहती, अरे विनाश तो होगा, लेकिन अभी उम्र छोटी है ना, 18 साल के बाद सोचना होता है, और अगर तुम्हारी बहुत दिल है तो पिताजी से पूछना, उनकी चिट्ठी अगर मिलती है तो आ जाना, 1 साल और पढ़ लो। अच्छा, तो मैं 71 में मई जून में आया था और गया यहां से, वहां पर उसी समय 71 में ये लड़ाई छिड़ गई बांग्लादेश वाली, और वो लड़ाई इतनी डरावनी थी। शाम को 6 बजता था तो हम जहां पढ़ते थे वहां ब्लैकआउट हो जाता था, सायरन बज जाता था, सब घरों में घुस जाओ अंदर, बाहर नहीं निकलेगा कोई भी। तो मुझे तो पक्का हो गया कि विनाश बाबा कहता होने वाला है, तो शुरू हो गया। अब मैं यहां क्या करूंगा रह के। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पेपर दिया हाई स्कूल का, और लास्ट पेपर लास्ट दिन ही टिकट करवा लिया और सीधा ही गांव से मधुबन आ गया पिताजी की चिट्ठी लेकर के 72 में 7 अप्रैल को। तो मैं कह रहा हूं मेरी भी गोल्डन जुबली हो गई। और इन दादियों के साथ फिर इतनी समीपता का, इतना सेवा का चांस मिला हर एक दादी के पास। सबसे पहली जो इन दादियों की एक विशेषता थी पूर्वजों की, जितना बाबा से प्यार था उतना बाबा की मुरली से बहुत प्यार था। और मैं ड्रामा अनुसार मुरली की सेवा में लग गया, मुरली की सिंधी सीखी पहले, सिंधी के साथ टाइप सीख लिया। और टाइप सीख लिया तो जब तक मुरली डिपार्टमेंट 76 में मुझे मिली, उसके पहले ही दादियों ने मेरी सेवा लगा दी कि जो भी क्लासेस चलती हैं, जो भी पॉइंट्स निकलती हैं, अव्यक्त बाबा आते हैं, तुम लिखो नोट करो सब। और ये सब साधन तो नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, टेप मशीनें नहीं थी जो रिकॉर्ड करे। तो मैं रात भर बाबा के साथ बैठता था, लिखता रहता था। और लिखने के बाद फिर सब दादियां कहती थी, आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने रात भर क्या बोला, मुझे लिख के दो, मुझे लिख के दो। तो मैं जो रात भर लिखता था ना, वो सुबह टाइप करता था। और टाइप करके फिर हर दादी के पास जाना होता था देने के लिए, कापियां मांगती थी सब दादियां। इनका इतना प्यार था कि बाबा ने बोला क्या है, क्लासेस क्या चली हैं, किसने क्या क्लास कराई है। तो ये मुरलियों के कारण मैं समझता हूं मुझे इन दादियों के बहुत समीप जाने का अवसर मिला। और साथ साथ जिन दादियों की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो उनको दादी दीदी कहती थी कि जाओ राजू के साथ बैठो, तुम सिंधी में लिखो, ये हिंदी में टाइप करेगा। तो वो हमारे साथ टेबल पर, एक ही टेबल पर हम कई दादियों के साथ, कितने दादियों के नाम सुनाऊं मैं आपको। सबसे अच्छी राइटिंग थी हमारी शांतामणि दादी की, नाम बताएंगे आप कहेंगे कहाँ फोटो है, फोटो पीछे लगे हैं, देख लेना। मैं शांतामणि दादी लौकिक में मम्मा की मौसी की लड़की माना बहनी थी, एक ही घर से मम्मा की माँ शांतामणि दादी, संदेशी दादी की माँ और ध्यानी दादी, ये तीन बहनें पहले समर्पित हुई और उनकी ये तीन चार बच्चियां समर्पित हो गई। सब थे लौकिक संबंध में ही, लेकिन इन दादियों की जो नेचर, एकदम इजी नेचर, स्नेह की मूर्तियां, और साथ साथ बाबा के प्रति, दादी जी के प्रति बाबा के अव्यक्त होने की बात है। अगर दादी ने कोई भी बात कही, दीदी ने कोई भी बात कही, माना ये बाबा ने कही, ये नहीं सोचा ये तो दीदी दादी हमारी हमजिंस हैं, हम तो साथ में रहे हैं, साथ में सब कार्य किया है, ये कब बड़ी बन गई। नहीं, बाबा ने इनको बड़ा बनाया है, इनको निमित्त बनाया है। ये निमित्त आत्माएं जो कुछ कहती हैं उसमें हमारा कल्याण है। अगर दादी दीदी ने कह दिया तुमको यहां रहना है, हाँ जी, तुमको यहां जाना है, हाँ जी। जैसे बाबा के प्रति सब समर्पित थे, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी को सबने इतना साथ दिया, इनका भी इतना ही रिस्पेक्ट था। ऐसे नहीं सोचती थी मैं बड़ी हो गई ये छोटी है, नहीं, परदादी तो परदादी है, ऐसा बड़ी दादी कहती थी, वो तो परदादी है। भले बाबा ने मुझे बनाया है लेकिन वो तो पहले से ही परदादी है, निर्मल शांता दादी को कहते थे, क्योंकि बाबा के लोग की बेटी थी वो तो। और बाबा के लोग एक बहू जो शुरू से ही बाबा के साथ रही, सेवाएं की, सब प्रकार से दो बहुएं हो गई, जैसे एक ब्रजेंद्रा दादी जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज बनी, और एक संतरी दादी जो बाबा के साथ साथ बहुत अच्छी संदेशी थी। तो इन दादियों के साथ उठने बैठने, सेवा करने का सौभाग्य मिल गया मुरली के कारण। तो जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी मैं उनके पास जाता था, दीदी दादी आज आपको मेरे साथ मुरली लिखनी है। तो शांतामणि दादी, संदेशी दादी, फिर हमारी एक सुंदरी दादी थी वो आबू रोड में रहती थी संगम भवन में, वो भी मुरली लिखने में मदद करती थी। और एक लीला दादी थी जो सिकंदराबाद हैदराबाद में बाद में बाबा ने दादियों ने भेजा। ये सब दादियों ने मेरे साथ मुरली लिखी। वो हाथ से लिखती थी, स्टेंसिल काटती थी सिंधी के कारण, सिंधी दादियों के कारण, और मैं वही मुरली फिर सिंधी से हिंदी में टाइप करता था। तो इनके साथ बैठना, खाना पीना, जैसे एकदम फैमिली टाइप, तो बहुत नजदीक से इन दादियों की पालना मिली। एक एक दादी की कितनी विशेषताएं सुनाऊं। सबसे पहले संतरी दादी के सुना देता हूं, क्योंकि संतरी दादी के मैं बहुत समीप रहा और बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी। जब बाबा व्यक्त हुए ना, तो सबसे पहले संदेशी संतरी दादी में ही बाबा की प्रवेशता हुई। फ्रांस में गई क्योंकि चार संदेशियों को बिठाती थी दादी। अचानक बाबा गए ना 18 तारीख को। अब 18 तारीख को जर शरीर तो छूट गया, अब उसके बाद आगे क्या करना है, कहाँ संस्कार करना, और इसके बाद आगे यज्ञ कैसे चलेगा, कौन संभालेगा, क्योंकि साकार में बाबा ने तो कोई को ऐसे निमित्त बनाया नहीं। दीदी को बनाया था तो दीदी को सेवा पर भेज दिया, इलाहाबाद की तरफ चली गई, और दादी को रोका अपने पास, वो बॉम्बे से आई थी। दादी के हाथ में हाथ देके शरीर छोड़ा, लेकिन फिर भी दादी के अंदर उतनी शक्ति आ गई कि जो सबको जहां जहां जा दादियां थी उन सबको फोन किए, रात भर बताया कि ऐसे हुआ है, ये हुआ है, आप आ जाओ। कोई माने ही नहीं पहले तो, ये क्या बोल रही हो, बाबा कैसे जाएंगे अभी, बाबा तो कहते मैं साथ लेकर के जाऊंगा। बहुत सारे प्रश्न उठे। तो जब ये संदेशियां बैठती थी तो दादी कहती थी जाओ तुम बाबा से पूछ के आओ। और बाबा कोई को दिखाई देता था, कोई को नहीं दिखता था, वतन में भी नहीं दिखता था। तो सब जाते थे, पहले गुलजार दादी गई, कहती है बाबा वहां लिखता है ड्रामा ऊपर, और कोई शब्द नहीं, बाबा नहीं मिला, वो पर्दे पर लिखा है ड्रामा। तो दादी कहती है ड्रामा तो मुझे भी मालूम है, लेकिन बाबा कहाँ है? बाबा अगर अव्यक्त हुआ है तो अव्यक्त वतन में दिखना चाहिए, और बाबा से पूछो तो बाबा आकर के डायरेक्शन दे, गाइड करे क्या करना है आगे। संदेशियां आप हो किस लिए? तो सबसे पहले जब ये संदेशी संतरी दादी बाबा के पास गई तो बाबा प्रवेश हो गए। बॉडी रखी है, पड़ी है, जलाया नहीं, संस्कार नहीं हुआ है, और उसमें आए संतरी दादी में, और बाबा ने बहुत 5-10 मिनट में ही कि ऐसे ऐसे बच्चे, बाबा ने कोई आपको छोड़ के कहीं नहीं गया है, सिर्फ कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है, अव्यक्त वतन में, लाइट के वतन में है, आपके साथ ही है, आप इसको ऐसे शरीर को जैसे विधिवत किया जाता है ऐसे इसका संस्कार करने की तैयारी करो, फिर बाबा आगे बताएगा, बाद में बताएगा। तो संतरी दादी के द्वारा फिर बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया वैसे वैसे ही बाबा के रथ को सजाया गया, बहुत बड़े ट्रक में सजा करके, और सजाने के समय भी संतरी दादी को बाबा ने ट्रांस में बुला लिया, और ट्रांस में बुलाने के बाद स्वयं शिव बाबा अपने रथ का श्रृंगार करने के लिए आए, प्रवेश हुए, और कहा बच्चे का मैंने इतना समय माध्यम यूज किया है, इसलिए आज शिव बाबा डायरेक्ट इसका श्रृंगार करेंगे। बड़ी वंडरफुल बात थी वो। तो संतरी दादी का बहुत नंबर 1 पार्ट रहा है। लेकिन जिस दिन संस्कार के बाद जब संदेशी चुनी जा रही थी कि किसको बाबा का रथ बनाया जाए, किस में बाबा बुलाया जाए, तो संतरी दादी ने कहा नहीं, मैं नहीं निमित्त बनूंगी, गुलजार दादी को बिठाओ। तो वो गुलजार दादी जी को बिठाया गया गद्दी पर कि बाबा को भोग लगाओ और बाबा को आवाहन करो। तो गुलजार दादी जब बाबा के पास गई हैं, फिर बाबा उस तन में 21 जनवरी 69 को शाम के समय आए हैं, और 1.5-2 घंटा तक बहुत अच्छी तरह से पूरी मुरली चलाई, कैसे शरीर छोड़ा है, कैसे क्या आगे होगा, कैसे मुरली चलेगी। जब पेपर का टाइम होता है तो पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है, इसलिए जो मुरलियां चली हैं रिफाइंड मुरलियां हैं उनको रिवाइज करना, और जैसे बाबा मम्मा यज्ञ की इतने बच्चों की पालना करते थे ऐसे ही दीदी और दादी मिल करके सबकी पालना करेंगी, सबके पत्रों का जवाब देंगी, जहां पर बच्चे बुलाएंगे वहां जाएंगी और सब कुछ डायरेक्शन साकार में ये देंगी, और अव्यक्त रूप में बाबा को जब बच्चे बुलाएंगे, जब याद करेंगे बाबा आएगा। ये सब डायरेक्शन 21 तारीख की मुरली में दे दिया। और उसके बाद तो दीदी दादी ने मिल करके कहते थे, शरीर दो है आत्मा एक है, माना इतनी एकता, एक मत, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, जरा भी क्वेश्चन नहीं। संस्कार अलग है, दीदी तो वैसे शादी हुई की हुई थी, लेकिन बाबा के साथ इतना टूट प्यार, बाबा के प्रति जैसे इतनी समर्पित बुद्धि, जो बाबा ने उन्हें मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दिल्ली से, दिल्ली में दीदी सेवाएं कर रही थी, उनको वहां से बुलाया और मम्मा की सीट पर दीदी को रखा, कि इतनी सारी बहनों की संस्था को साकार में कोई संभालने के लिए बहन चाहिए, तो दीदी मनमोहिनी को बाबा ने खास मम्मा की सीट पर बिठाया। और फिर जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जी को साथ लिया, और दादी ने, दीदी ने, दोनों ने मिल करके फिर इतने बड़े पूरे विश्व की सेवा कैसे करनी है। तो संतरी दादी का परिचय तो शायद मालूम होगा, वो हमारे दादा विश्व किशोर की युगल थी। विश्व किशोर दादा बाबा के राइट हैंड थे, लौकिक बिजनेस में भी बाबा के भाई के लड़के थे, बड़े भाई के लड़के थे। और वो जब समर्पित हुए तो शुरू से ही ये दोनों ही, एक बेटा भी था वो अमेरिका में अभी भी है, लेकिन शुरू से ही इन दोनों ने बाबा को बहुत नजदीक से हर प्रकार से सहयोग दिया, साथ दिया। संतरी दादी और दादा ने, दादा 68 में अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ा, लेकिन संतरी दादी को मधुबन में ही बाबा के अव्यक्त होने के बाद रखा था। और जब मैं आया तो उस समय मधुबन का स्टॉक संभालती थी, जो हमारा, हम सबको कपड़े मिलते हैं साल में एक बार मधुबन के समर्पित भाई बहनों को, अभी वो मुन्नी बहन संभालती हैं, उस समय संतरी दादी इंचार्ज थी उसकी। तो जब मैं पहली बार आया तो दीदी की नज़र थी कि इसको कैसे भी मधुबन में रखना है, तो संतरी दादी को बोला इसकी अटैची मंगाओ। अब मैं, अटैची क्या होती उस समय, लोहे की टैंक होती थी, लोहे की बॉक्स जैसा, छोटा था मेरे पास एक, मैं तो गांव से आया था, कोई ड्रेस तो इतनी थी नहीं, तो मैं तो पहले डर गया कि शायद मैं जाने वाला हूँ, मेरी अटैची चेक होगी कि इसमें कुछ उठाया तो नहीं, यहाँ से रख तो नहीं लिया। तो मैं डरते डरते अटैची लेकर के आया, संतरी दादी ने कहा मेरे कमरे में लेके अटैची आओ, पेटी, लोहे की पेटी। तो उसमें मेरे एक दो पुराने कपड़े थे, कुछ तो ज्यादा था नहीं, और गांव में कैसे सर कपड़े होते, वही सब थे। तो जब मैं गया तो कहती तुम्हें मेरे कमरे में छोड़ के जाओ, और जब जाना तो एक दिन पहले ले जाना। तो मैं जब जाने लगा, जाने के एक दिन पहले गया तो देखा अटैची एकदम फुल, सब कपड़ों से भरी हुई है, फुल भरी हुई थी, और बहुत अच्छे अच्छे पैंट सूट, उस समय हांगकांग से कपड़े आते थे मधुबन वालों के लिए, बिगरी पार्ट था, यहाँ घर में तो ऐसे होते नहीं थे। तो एक परिवार, बाबा का बच्चा अनन्य हांगकांग में रहता था, तो वो बने बनाए सिले सिलाए कुर्ता पजामा ये सब पैंट सूट भेजता था वहां से, गठरी आती थी और वही हम सबको मिलती थी। तो मेरी अटैची में कम से कम 7-8 ड्रेस पैंट सूट पैक फुल भर दिया, फुल भर के कहती है ये तुम ले जाओ। मैंने कहा दादी ये मैं क्यों ले जाऊं, और ये लेके जाऊंगा तो लोग कहेंगे वहां एक महीने में चोरी करके आ गया, मैं तो नहीं ले जाऊंगा। कहती है अरे तेरे को पता नहीं है, दादी दे रही है ना तुमको, तुम रोज इसको पहन करके घूमना, स्कूल में भी जाना ये पहनना, बहुत अच्छे कपड़े हैं, फटने वाले भी नहीं है। सामने कहा दादी ये तो मेरे से नहीं होगा। कहती नहीं नहीं तुम समझता नहीं है, लोग समझते हैं ये इतना परिवार में बड़ा है, घर का 3 का मालिक है, खेती है, घर है, दुकानें हैं, तो तेरे को छुट्टी नहीं देंगे ऐसे कि कहाँ जाता है तुम ये सब छोड़ करके। लेकिन तुम रॉयल्टी से रहेगा ना तो कहेंगे एक मास में इतना रॉयल्टी से देखो क्या पहनता है, कैसे रहता है, एक मास वहां गया और इतना वो सबको भरपूर करके आया अपने को। तो दादी ने हमको फुल 7-8 अटैची भर के कपड़े की भेज दिया, जाओ लेकर के। मैं तो नहीं पहना गांव में, लेकिन फिर भी मैं जैसी थी वो सब लेकर के आया वापस। जब आया एक साल के बाद तो कहती क्यों नहीं पहना तुमने, तुमको पहनना चाहिए। क्या दादी ये तो मेरे को लज्जा आती है ये सब पहनने में। फिर यहां तो वही कपड़े हम पहनते थे, कुर्ता पजामा तो था नहीं, ये सफेद ड्रेस कैसे छोड़ा है वो तो बहुत कहानी है उसकी लंबी। हम लोगों को ड्रेस कैसे बदली, पैंट सूट कैसे छूटा उसकी कहानी है। तो संतरी दादी मधुबन में सब सेवाएं करती थी, संदेशी भी थी। और संतरी नाम क्यों पड़ा था पता है आपको? बहुत मुलायम थी, बहुत स्वीट थी, तो कहते संतरे जैसी है। बाबा कहता था संतरे जैसी मीठी है, स्वीट है, मुलायम है, इसकी वाणी कितनी स्वीट है। तो इसलिए बाबा ने उसका नाम ही संतरू रख दिया। लौकिक नाम तो कुछ और होगा, मेरे को याद नहीं है, लेकिन संतरू संतरू कहते संतरी दादी बन गई। फिर बाबा ने उनको कहा कि तुमको अभी ठंडी में यहाँ ठीक नहीं है, तुम कलकत्ता में रहो। अब एक बाबा ने उनको कलकत्ता में रखा फिर। और जब कलकत्ता में निर्मल संता दादी के साथ रहने लगी तो लास्ट दिनों में यहां मधुबन में आई थी, जब शरीर यहीं छोड़ा। तो शाम की बात सुनाता हूं, 9 बजे 8:30 बजे मुझे बुलाया कमरे में, क्योंकि इन दादियों को बताया ना मुरली से बहुत प्यार था, और कितना इसके पास मेरे पास खजाना है वो सब लेना चाहते थे। कहती थी तुमने जो एक हफ्ते में प्रश्न उत्तर क्लासेस मुरली टाइप की है वो सब खजाना मेरे पास ले आओ। तो मेरे मुख से निकला दादी आप कल जाने वाली है ना तो सवेरे दे दूंगा। बोली नहीं नहीं तुम जाओ अभी रात को ही और सब तैयार करके लिफाफा बड़ा बना करके मेरे पास ले आओ, संतरी दादी कहती है। तो मैं संतरी दादी की बात सुना, पहले तो लगा कि कल दे देंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा दादी है कह रही है क्योंकि आज्ञाकारी तो बनना ही है। तो मैं गया रात को, तैयार किया सारी पोस्ट का, जैसे लिफाफा तैयार किया, क्लासेज टाइप किया, सारी जो भी थी सब लिफाफा बनाया और रात को मैं दे आया। तो बड़ी खुश हो गई, कहती देख मैंने सब तैयारी कर ली, अब रिश्ते के लिए मुरली भी हो गई, भोजन के लिए भी बोल दिया और सब बिस्तर भी पैक कर लिया, सब सामान पैक कर लिया, कल मैं जाऊंगी। और रात को 2 बजे उठती थी, वैसे 2 बजे संदेशी थी, कभी कभी ट्रांस में चली जाती थी अमृत वेले, और बाबा के पास ट्रांस में गई तो गई, वापस ही नहीं आई। वैसे जो उसकी संभालने वाली बहन थी वो कहती है सुबह की मैं जानबूझ के नहीं जगा रही थी कि दादी कभी कभी सोए सोए भी ट्रांस में चली जाती है, तो मैंने हिलाया नहीं तो ये उठ नहीं रही थी, तो मैंने कहा क्या हो गया इतना टाइम अभी तक नहीं उठी है। तो फिर मैं जब हिला के देखा तो थी ही नहीं, पता ही नहीं चला कब शरीर छोड़ दिया। ऐसा दादियों का बाबा से, बाबा की मुरली से, पढ़ाई से इतना प्यार कि उसे जैसे सीने से लगा के रखूं, ऐसी संतरी दादी थी। ऐसे अचानक गई बाबा की गोदी में, दिसंबर महीना था वो। ऐसे ही हमारी चंद्रमय दादी, मुरली से प्यार सुना रहा हूं मैं कितना था। वैसे बहुत एक्टिव, कोई भी बीमारी नहीं थी दादी को। बेंगलोर के लिए छुट्टी लिया मधुबन में, और गेट पर पांडव भवन का जो मेन गेट है उसके ऊपर मेरा ऑफिस है गेट के ऊपर, तो गेट पर आकर के छुट्टी लेकर के जा रही थी, गाड़ी वहां रोक दिया गेट पर ही, और ड्राइवर को कहती है तुम जाओ ऊपर राजू से मुरली खजाना लेकर के आओ, मैं जा रही हूं बेंगलोर साइड, उसके पास जो कुछ हो सब ले आओ, पहले तो उसको बुलाओ हमारे पास। तो जब मुझे बुलाया गेट पर तो कहती तुम्हारे पास जितनी मुरलियां हैं जो भी खजाना है सब ले आओ। न दादी टाइम लगेगा, आप तो गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। बोली मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, यहीं रखती हूँ, तैयार करके ले आओ। और मैं वो लास्ट में इतना सारी मुरलियां क्लासेस सब खजाना तैयार करके उनको दिया जा करके और गई बेंगलोर बेंगलोर में सेवा करते करते अचानक उनको दर्द पड़ा और हार्ट फेल हुआ, शरीर छोड़ दिया, वापस नहीं आए। अंत मत्ति सो गति, मैं ये सुनाना चाहता हूं, अंत में भी एक बाबा और एक पढ़ाई, केवल बाबा की मुरली और कोई चीजें बाबा की मुरली के सिवाय इन दादियों ने स्टडी नहीं किया, हाथ में नहीं लिया। आज की बहनें, आज की टीचर्स क्लास कराने के लिए इधर की कहानियां पढ़ेंगी, इधर की क्लासेस सुनेंगी, इधर के कोई साहित्य पढ़ेंगी, बाहर के उनको पढ़ करके रट करके क्लास कराते हैं, लेकिन हमारी दादियों ने कभी भी कोई भी बात केवल बाबा की मुरली, उसके सिवाय कुछ भी न पढ़ा, न कभी कहानियां ऐसी सुनाई। जो कुछ था वो बाबा ही था, बाबा ही मेरा संसार है, और बाबा को संसार बना करके, दिल में बसा करके मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपना नाम नहीं करना है, अपने लिए कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए। मैं एक दादी की और कहानी सुनाता हूं। एक दादी थी हमारी जवाहर दादी, और जवाहर दादी बहुत सीधी साधी, बहुत भोली थी। उसको बाबा ने यूपी की तरफ सेवा पर भेज दिया, साकार में ही भेजा था। अब उस दादी को कोई इतना बड़ा तरबूजा दे गया, बेगरी पार्ट से यहां से गई थी। अब वो तरबूजा देख के सोचती है, ये कौन खाएगा इतना बड़ा तरबूजा, ये मैं बाबा के पास भेज दूं। अब उसको इतना पता नहीं था ये बाबा के पास भेजें कैसे, तो उसने चाकू लिया और चाकू से ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, राजस्थान, तरबूजे पर लिख देते ना इसे काट करके, लिख दिया। और लिख करके एक भाई को बोलती है, जाओ तुम आबू की तरफ जो ट्रेन जाती है उस पर रख के आ जाओ। वो समझा रहा है, दादी ऐसे कैसे जाएगा, इस पर टिकट नहीं है, इस पर कुछ नहीं है, मैं कह रही हूं ना बाबा को मुझे भेजना है। और उसने वो तरबूजा ट्रेन में रखवा दिया, आबू की तरफ ट्रेन जा रही है। अब वो ट्रेन में, कितनी ट्रेन बदली होंगी, सीधा तो ट्रेन उस समय थी ही नहीं यूपी से, और ट्रेन में घूमते लुढ़कते लुढ़कते बाबा के पास आ गया, आबू में आ गया। अब जब आबू में आया तो उसका फॉर्म एड्रेस तो था ही नहीं, न टिकट था, किसने भेजा किसने भेजा। अब तरबूजा इतना बड़ा देख करके बाबा कहता, बाबा जानता है वही एक बच्ची है, उसके अंदर बहुत भावनाएं हैं बाबा के प्रति, उसी ने भेजा होगा। ऐसे बच्चे थे बाबा के, भोले सच्चे, और सच्चे बच्चों का बाबा ही स्वीकार करता है। अंदर एक बाहर दूसरा होगा तो कहां का कहां पहुंच जाता हो, उसके अंदर था ये बाबा खाएगा, बाबा के बच्चे मधुबन वाले खाएंगे, इसलिए उसने अपने तरबूजे को ऐसे भेज दिया। अब उसने कैसे शरीर छोड़ा मधुबन में, उसकी कहानी सुनाता हूं। क्योंकि उस समय हमारी डिपार्टमेंट जो थी ना बिस्तरा की थी, बिस्तर, क्योंकि उस समय होल्डाल बड़े बड़े लेके आते थे लोग, आज तो सब साधन यहां है मधुबन में। उस समय अगर कोई मधुबन में आता था तो अपने साथ बाल्टी, मग, बर्तन खाने के और बिस्तरा पूरा बड़ा, रजाई गद्दा सहित होल्डाल आता था। तो मैं सबके कपड़े मैं उठा उठा करके कमरों में ले जाता था, और जब वो जाते थे तो तैयार करके उनको उठा के गाड़ी में बिठाना, और बैलगाड़ी में जाता था अधिक सामान, तो ये गाड़ियां तो आती नहीं थी, बैलगाड़ी थी बाबा के पास यहाँ, तो मैं लोड करता था भेजता था। तो उस दिन कहती है, मेरे को बुलाया, एक भाई को और बुलाया कि तुम मेरा सामान पैक कर दो और मैं क्लास में जाके छुट्टी ले आती हूँ। हमने पैक करके रखा और क्लास में गई छुट्टी लेने, और छुट्टी लेकर के दादियों से सबसे छुट्टी लिया, सामान पैक करवा दिया। फिर हम लोग कहती है, तुम लोग सामान भले ले जाओ, मेरे को थोड़ा स्नान का ख्याल आ रहा है। अब सामान हम लोग निकाल के बाहर लाए और स्नान करने गई, स्नान करके बिस्तर पर लेटी और वहीं बाबा की गोदी में चली गई। अब गाड़ी वाला खड़ा है, सामान लोड हो रहा है, कहाँ गई दादी, कहाँ गई, अब स्नान करने गई इसलिए दरवाजा बंद है, कौन देखेगा जाकर। अब हम लोग सामान तो ले आए, वो दादी आ ही नहीं रही। फिर बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोल करके जब देखा तो बाबा के गोद में चली गई थी। छुट्टी भी लिया, पैकिंग भी किया और ऐसे ही बाबा की गोदी में चली गई। ऐसे दादियों की जो लगन थी, जो बाबा कहता है ना बाबा बाबा कहकर के शरीर छोड़े, अंत मत्ति सो गति, सब कुछ समेटा हुआ हो, कोई भी चीज अंत में ना याद आए, ऐसे हमारी दादियां कई एग्जाम्पल ऐसे बनी, और इन सब की सेवा करने का, उनके समीप रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आत्माएं जिनके रग रग में बाबा था, ये देवियां के रूप में, जैसे प्यूरिटी की देवी थी, किसी देहधारी में, किसी भी पैसे वाले में, किसी के संपत्ति पर उनकी नजर नहीं गई। क्या देंगे मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, जिसको देना है सब बाबा को दें, यज्ञ को दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी अनासक्त वृत्ति, इतनी त्याग वृत्ति, और जो कुछ भी मिला, मनोहर दादी हमें सुनाती थी कहानियां, मनोहर दादी बहुत कहानी सुनाती थी मनोरंजन से, मीठी मीठी कहानियां यहीं रहती थी ज्ञान सरोवर में, पहले बाद में जब बन गया तो मनोहर दादी कहती थी, एक दिन क्लास के बीच में माताएं आने लगी, अच्छी अच्छी माताएं, मारवाड़ी माताएं, तो कभी हमको देखती नहीं थी भंडारे में कब भोजन बनता है, क्या करती हैं, कब खाती हैं, कब सोती हैं, कुछ नहीं पता, सारा दिन सेवा करती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। तो एक दिन दो तीन माताएं आई, बोली दादी आज आपका भंडारा मुझे देखना है। तो इनको डर लगे, भंडारा क्या देखेंगे, भंडारे में कुछ आई ही नहीं, भंडारे में एक नमक की शीशी है और थोड़ा आटा है, तो मैं भंडारा देखना है। अब वो भंडारे में घुस गई जाकर के माताएं, तो जबर अंदर चली गई, और जब देखने लगी तो कहती कहाँ है सब कुछ, कुछ नहीं है यहाँ, तो सिर्फ एक नमक की शीशी है और आटे का एक थोड़ा सा डब्बा है। कहती यही भंडारा है, यही मेरे पास भंडारा है, आलू ले आती हूँ, आलू छोटे छोटे बाजार से मिलते हैं वो ले आती हूँ, दो टुकड़े करती हूँ, आलू में पानी डाल करके, नमक डाल करके, रोटी और आलू की सब्जी खाती हूँ रोज, भूखी थोड़ी रहती हूँ, भरपूर है हमारे पास, सब कुछ है, तृप्त हूँ। अब उन माताओं को बड़ा संकल्प चला, इतना त्याग, इतना त्याग, कुछ भी मांगती नहीं किसी से, कुछ दो तुम लोग मदद करो, कुछ नहीं चाहिए। तो उन माताओं ने क्या किया, सब साधन, सब राशन, घी के डब्बे, सारा सामान, भंडारा भरपूर करने के लिए सब लेके आ गई, दो तीसरे दिन सब भर दिया करके। अभी दादियां सोचें ये मैं क्या करूंगी, और हम खाएंगे और बाबा घर में कुछ नहीं होगा। उन्होंने सब पैक किया और चुपचाप मधुबन भेज दिया, कुछ अपने लिए नहीं रखा। इतना अंदर से यज्ञ बाबा का चले, बाबा के घर में सब भरपूर रहे, हम तो कहीं भी रह करके सेवा करके खा लेंगे दो रोटी। ये अंदर का, इन आत्माओं का जो दिल का प्यार था यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, आज इस यज्ञ को यहां तक उन्होंने पहुंचाया, उनके त्याग की ये बलिहारी है। इसलिए मैं ये कहता हूं, आज ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, आज इतना विस्तार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसकी जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं, त्याग की, बलिदान की, जिनको आप सुनते रहेंगे तो पूरी रात बैठे रहेंगे। जानकी दादी विदेश गई, 74 में भेजा गया यहां से, पूना में रहती थी। पहले तो जाने के समय कहने लगी कि दादी हमको क्यों भेजते, हमको इंग्लिश नहीं आती है। तो दीदी दादी ने कहा नहीं, तुम्हारे को ही जाना है, क्योंकि वो जो निमंत्रण था ना, वो जयंती बहन की लौकिक माँ का था लंदन का, और वो पूना से ज्ञान में निकली थी दादी से ही। तो जयंती बहन और जयंती बहन की लौकिक माँ रजनी बहन, वो सब लंदन में रहती थी। तो जानकी दादी को तैयार किया दादियों ने कि आप जाएंगी ना तो वहां बहुत अच्छी सेवा होगी, सिंधियों की सेवा करने की दादी की तो पहले से पूना में आदत थी। तो जब वहां गई तो वहां तो कुछ नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, टेनिसन रोड, अभी भी रखा है, छोड़ा नहीं उसको, यादगार, मैं दो बार हुआ है लंदन, वो टेनिसन रोड में इतना छोटा सा कमरा, अभी तो उसको कहते और बड़ा कर दिया, ले लिया आजू बाजू वालों का, लेकिन जब पहले थे तो एक ही कमरा था, और उस एक कमरे में संदल कहां से उठाया था मालूम है, कोई भी सामान किसी को अगर फेंकना होता था ना तो वो अपने घर का सामान निकाल के लोग बाहर रख देते हैं, गाड़ी वाले आते हैं म्युनिसिपैलिटी से और सामान जो बाहर रखा होता है वो किचड़ा समझ करके उसको उठा के ले जाते हैं। तो दादी पैदल कर रही थी और दादी को नीचे सोने में तकलीफ होती थी, अब संदल कहां से आएगा, किससे मांगेंगे, कहां से खरीदेंगे, तीन जने, जयंती बहन, दादी और सुदेश बहन बाद में पहुंच गई। अब उसी मकान में तीन जने रहते थे, उसी में क्लास मुरली सुनानी है, उसी में भोजन बनाना है, उसी में सोना है। तो सोने के लिए कोई संदल तो चाहिए ना, या क्लास कराने के लिए भी ऊंचा बैठने वाला आसन तो चाहिए। तो चक्कर लगा रही थी तो देखा एक संदल किसी ने अपने दरवाजे का एक बहुत अच्छा पट्टा निकाल के बाहर रखा है। दादी ने उस मकान मालिक को बुलाया, बोला ये क्यों निकाला है बाहर? बोला दादी ये तो बेकार हो गया ना, इसको हमारे काम का नहीं, इसलिए हमने निकाल दिया। कहती हम ले लें क्या इसको? हाँ दादी भले ले लो, तो निकाला ही है। और वो संदल उठवा लिया वहां से, वही तख्ता उठवा लिया और अपने सेंटर पर रख करके उसी के ऊपर सोती थी, नीचे अटैचियां लगा करके, ईंटे लगा करके उसी पर सोती थी और फिर उसी पर बैठ के क्लास कराती थी। इतना त्याग। और अगर आज आप लंदन में जाएंगे तो कितना बड़ा रिट्रीट सेंटर है, कितना बड़ा ग्लोबल हाउस है, डायमंड हाउस है, जगह जगह पर बाबा के सेवा केंद्र हैं। उस त्याग से इतना बड़ा विस्तार देख करके आप कहेंगे वाह, लंदन के अंदर इतने सेंटर्स, इतने बड़े बड़े मकान, कैसे बाबा ने दादियों को इस त्याग के आधार से इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया और दिखाया कि कैसे मांगने से मरना भला, मांगना नहीं किसी के आगे, हाथ नहीं फैलाना, लेकिन सेवा करो और जो कुछ मिले। दादी कहती थी पहले भंडारी में 80 पाउंड आए मास में। दादी ने भंडारी खुलवाई और कहती 40 मधुबन भेज दो। उस दिन से लेकर के लास्ट तक भी जो भंडारी में आया आधा मधुबन जाएगा सेवा पर जाएगा, और आधे में हम जैसे भी चलाना हुआ चलाएंगे, जैसे भी खर्चा निकालना होगा। बसों में गई, ट्राम में गई, इधर उधर बैठ के, एक भी गाड़ी नहीं, एक भी साधन नहीं, और इधर सेवा उधर सेवा करके करके क्या से क्या बना दिया। आज सबसे बड़ा क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश का लंदन में है। जब एक साथ क्लास होता है तो मैंने भी 700 लोगों का क्लास कराया है लंदन के अंदर। अभी लॉकडाउन की बात है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, अभी क्लास नहीं चल रहा है। मैं 18 जनवरी के दिन फोन पर पूछा, हमने कहाँ क्लास था, तो बहनों ने कहा लेस्टर में क्लास था, वहां पर छुट्टी थी, लंदन में क्लास नहीं था। और लेस्टर में सब भाई बहने इकट्ठे हुए थे, तो बहने गई थी वहां पर सब, तो सुना रही थी कि लंदन के अंदर क्लास नहीं हुआ क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं आने देती है। लेकिन दूसरे जो सेंटर्स हैं, शहर हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के भवन हैं, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, एकदम समर्पित बुद्धि है, तन मन धन सब बाबा की सेवा में, और एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करते। जब मैं गया था रेगुलर, मैं देखता था सब के सब की गाड़ियां आ जाती थी अमृत वेले योग करने के लिए। अमृत वेला योग है, मुरली क्लास है, रेगुलर पंचुअल। इतनी ठंडी में जहां बर्फ पड़ती हो वहां पर सवेरे सवेरे नहा धो करके लोग क्लास में आए। हम यहां पर देखो ठंडी में डरते हैं, पता नहीं क्लास में जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वहां पर इतना बाबा के प्रति, पढ़ाई के प्रति, श्रीमत के प्रति रिस्पेक्ट है। और दादी ने एक एक की रग रग में बाबा भर दिया है। आप किसी की गाड़ी में बैठो, मुझे क्या है 15 दिन मैं रहा तो ड्यूटी लगाई थी लोगों की, भाई बहनों की, प्रवृत्ति वालों की, कि इसको फलानी जगह ले जाओ, वहां क्लास कराएगा, वहां घुमा देना, उस एरिया को दिखाना। अब रोज सवेरे सवेरे मुरली क्लास के बाद, नाश्ते के बाद गाड़ी आके खड़ी होती थी, भाई साहब बाबा की गाड़ी में बैठो, बाबा के घर में चलना है, बाबा की दुकान पर चलना। मैं बाबा की दुकान, बाबा का घर, बाबा की गाड़ी, हम सोचते सेंटर की है इसलिए बाबा की कह रहा है, नहीं नहीं उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी को, ये बाबा की गाड़ी में बैठना है, बाबा के घर में चलना है। अब हम तो चल देते थे, वे देखते तो इसके अपने घर में ले जा रहा है, ये तो दुकान पर ले जा रहा है, और वहां पर हमेशा बाबा का घर, बाबा की गाड़ी, बाबा की दुकान, अंदर से बाबा बाबा बाबा, जो बाबा कहते ना अनहद नाद, सदा के लिए बाबा बुद्धि में बिठा दिया। तो ऐसे बाबा के बच्चे विदेश में मैंने देखे कि दादियों ने कैसे त्याग वृत्ति से इतना सेवाओं का विस्तार किया। तो एक एक दादी की जन्म कहानी है, बहुत बड़ा यज्ञ का फाउंडेशन बन करके रही हैं। कितने पूर्वजों की कहानी आपको सुनाऊं, सब एक से एक नंबर वन, और बाबा की सब भुजाएं राइट हैंड अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए एडवांस पार्टी में क्या करेंगी, कैसे करेंगी। बाबा कहता है जो एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं वो ज्ञान में नहीं आएंगी फिर से, वो नई दुनिया की स्थापना के लिए गई हैं और अपनी तपस्या के बल से, योग बल से नई सृष्टि का प्रारंभ करने के निमित्त बनेंगी। तो इसलिए ये आत्माएं अभी जो एडवांस पार्टी में जाकर के सेवाएं कर रही हैं, दीदी दादी की तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं, मैं उनकी तरफ ज्यादा नहीं गया, लेकिन ये अन्य दादियां जो उनकी भुजाएं बन करके रही वो एक से एक नंबर वन थे। अरे भोली दादी की क्या विशेषताएं आपको सुनाओ। भोली दादी भंडारे की इंचार्ज, सवेरे सवेरे पहुंच जाती, दादी आज क्या बनेगा, सारा दिन का मेन्यू लेकर के आ जाती, कितने लोगों का भोजन बनेगा, क्या बनेगा, सब पूछ करके आई एक बार दादी से मिलके सवेरे, और सारा दिन भंडारे में बैठी अखंड 24 घंटे आपको भंडारे में मिलेगी, कोई किसी समय भी चला जाए भंडारा खुला हुआ है, भोजन मिलेगा उसको, लेकिन एक चीज को भी उसने यज्ञ की भोजन की व्यर्थ नहीं जाने थी। रात को मान लो कोई चीज बच गई है तो सवेरे उसका रूप परिवर्तन होकर के इतने प्यार से सबको मिलेगी जो कोई को पता नहीं चलेगा रात की बची हुई चीज है, कुछ भी व्यस्त होने नहीं दिया। रोटियां बच गई, सब्जी बच गई, सुबह सेलवानी बन रही है और सेलवानी सब बहुत प्यार से खा रहे हैं। मना यज्ञ की एक एक कणे का महत्व तो रख करके, यज्ञ के एक एक चीज का, और कैसे सबसे सेवा करानी है। हम लोग जब है ना सुबह सुबह आ जाते हैं कमरे में, लाल लाल आटा गूंद दो चल के, आज 500 रोटी बनानी है, मशीनें तो थी नहीं, और कमरे से ही पकड़ के हाथ पकड़ करके ले आती थी, आटा गूंद दिया तो ऐसे नहीं छोड़ेगी, लाल मक्खन निकाला है थोड़ा सा ले जाओ खाना, मक्खन मक्खन मिलेगा। मतलब हर चीज पर ध्यान, दो दिन सामने अगर नहीं आए कहीं कारण से, किसी कारण से, और अचानक पहुंच के इधर आओ कहां थे तुम, खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत ठीक है, कुछ भी हो गया, दादी आज खांसी थी ना बहुत खांसी थी, अच्छा इधर आओ रात को मेरे पास आना, मैं इसको मालिश करके इसमें गर्म हलवा बांध दूंगी, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। क्या दादियों की पालना है, कभी दवाई नहीं चाहिए, इंग्लिश दवाई नहीं दिया कभी, लेकिन कभी हल्दी का दूध बना करके दे दिया, कभी हलवा बना करके इधर बांध दिया, गला ठीक हो गया। तो ऐसी दादियां जिन्होंने इस यज्ञ के अंदर इतने बड़े यज्ञ को कैसे शुरुआत की, कैसे इसको बाबा के बाद आगे बढ़ाया, आप सोच सकते हो। बाबा जो साकार थे, बाबा तो बाबा थे, लेकिन बाबा के नक्शे कदम चल करके दादियों ने आज यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन बाबा की श्रीमत सिरमत है, आज तक भी बाबा की श्रीमत में कहीं मन मत और पर मत ऐड न हो जाए। तो ऐसा ध्यान रख करके इतने बड़े यज्ञ को इतना विस्तार किया, इतना हम सब की पालना की, इतना सारा झाड़ तैयार है, अब क्या चाहिए, अब चाहिए उनकी पालना का रिटर्न। जो उन्होंने हम सब की पालना की है, इतना योग्य योगी बनाया है, हम सब मिल करके बाबा को, अपनी दादियों को उस स्नेह का, उस पालना का सबूत दें। ठीक है, ओम शांति।